Let's pray.
आइए प्रार्थना करें.
Thank you, Father, for this day you have given us, Lord.
धन्यवाद पिता इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है.
Thank you for what we heard now, Lord Jesus.
प्रभु धन्यवाद जो प्रभु आज हमने इस समय सुना है.
We pray that the words that we hear will not go in vain.
प्रभु जो वचन हम यहाँ सुनते प्रभु व्यर्थ न जाने पाए.
We pray that the Holy Spirit will bring it into our hearts, O Lord.
पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते कि हमारे हृदयों में आने पाए.
Let us sit with that as we heard with the fear of God in our hearts, Lord.
प्रभु जैसे हमने सुना प्रभु उस भय के साथ प्रभु हम हमारे हृदयों में लेकर हम उसे बैठे.
Let whatever we speak will give glory to your name, not praise for ourselves, Lord.
प्रभु जो कुछ हम यहाँ पे बोले हमारे लिए महिमा नहीं लेकिन आपके नाम को केवल महिमा लेकर आए.
You only be with us and your presence be with us, Lord.
प्रभु आप हमारे साथ रहे आपकी उपस्थिति हमारे साथ में होने पाए.
In Jesus' name.
यीशु के नाम से.
I don't know it was a coincidence or what, but what brother spoke is somewhat related to what I wanted to speak.
और मैं नहीं जानता ये आकस्मिक रूप से लेकिन जो यहाँ पर बताया गया स्टोरी वो आज मैं वो ही बताने जा रहा हूँ उसी संदर्भ में.
Brother spoke about righteousness of Christ and the blood of Jesus.
और यहाँ पर प्रभु यीशु की धार्मिकता और यीशु के लहू के बारे में बताया गया.
What I want to, what God was telling me, speaking to me was about the value of the blood of Jesus, that how much we value the blood of Jesus.
और जैसे मैं आज बताना चाहता हूँ कि कितना अधिक हम यीशु के लहू की मूल्य करते उसके बारे में बताना चाहता हूँ.
लास्ट संडे वी हर्ड अबाउट फाइटिंग द फाइट ऑफ फेथ.
और गए रविवार को हमने सुना था कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के बारे में.
सो वन थिंग दैट वी नीड इज फेथ.
और एक चीज की जरूरत है वो विश्वास है.
फेथ दैट गॉड विल गिव मी द विक्ट्री.
और विश्वास इस बात का कि यीशु मसीह मुझे ये विजय देगा.
एंड वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस.
और मुख्य भाग उसका यीशु मसीह का लहू है.
फेथ इन द ब्लड ऑफ जीसस.
और यीशु मसीह के लहू में विश्वास.
व्हेन एडम सिंड.
और जब आदम ने पाप किया
He lost many things that God had given him in the Garden of Eden.
और आदम के बगीचे में परमेश्वर ने जो कुछ उसको बहुत सारी चीजें दिया था पाप करने से बहुत कुछ उसने खो दिया.
First thing was he was cast out of the Garden of Eden.
पहली चीज तो बगीचे से बाहर निकाल दिया गया.
He was taken away from the presence of immediate presence of God.
और परमेश्वर की जो उपस्थिति उससे वो बाहर निकाल दिया गया.
Then the guilt of sin came into his life.
और वो पाप का जो दोष है उसके जीवन में आया.
Then he to approach God.
और वहां से वो डरने लगा परमेश्वर के पास जाने के लिए.
His relationship with God was broken.
और परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था वो पूरी तरह से टूट गया.
And then we see as the next generation descendants came, more and more sins were evident.
और जैसे हम आगे देखते और भी आगे उसके आगे पीढ़ियां आती गई तो और भी पाप बढ़ते गया.
So the generations ahead it became that they became very far away from God.
और वो जो आने वाली जो पीढ़ी थी आगे की पीढ़ी परमेश्वर से बहुत दूर चली गई.
So God had to make a way to bring back man go back to God.
और परमेश्वर को एक रास्ता बनाना पड़ा ताकि मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस लौटा सके.
We need to know that we cannot come to God on our own. It is only God who initiates that work in us.
और हम जानते हैं कि हम अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं आते. वो कार्य केवल परमेश्वर हमारे जीवन में आरंभ करता है कि उसकी निकट हम आए.
So when man sinned against God,
एक मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया,
first thing that happened is he got separated from God and God was full of wrath against man.
और जो वो परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर उसको ऊपर पूरी तरह से क्रोधित हो गया.
And the wrath of God is so intense because he hates sin like he doesn't like he is very hatred towards sin.
और परमेश्वर जो है पाप से इतना घृणा करता है कि मनुष्य के प्रति पूरी तरह से क्रोधित वो हो गया इस कारण.
In the Old Testament we see that the blood of Jesus the blood that was they used to sacrifice animals in order to for the sin.
और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो जो पशु है उनका जो है जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था उनके लहू के द्वारा पापों के प्रति उस क्रोध का सामना करने के लिए.
बट दैट वॉज जस्ट अ टाइप ऑफ वॉट क्राइस्ट दैट वॉज जस्ट अ शैडो ऑफ वॉट गॉड वॉन्टेड टू डू थ्रू क्राइस्ट.
लेकिन वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा करना चाह रहा था उसकी एक छाया सी थी वो.
बिकॉज when they sacrifice the animals, it is not a full thing that God wanted to do.
और जब पशुओं का बलिदान किया जाता था तो वो एक आधा चीज था परमेश्वर के नजर के सामने संपूर्ण नहीं था.
Because that guilt is still there.
लेकिन वो पाप का दोष वहीं पर था.
When David sinned,
और जब दाऊद ने पाप किया,
he said in one verse in Psalm 32, we know that verse.
और उस 32 भजन संहिता में उस वचन को हम जानते हैं.
It says, blessed is those whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
और वहाँ पे वो लिखता है कि धन्य है वे लोग जिसके अपराध ढांपे गए हैं.
So David just had its sin covered.
और दाऊद के पाप जो है सिर्फ ढांपे गए थे.
It is like a blanket covering the sin.
और जैसे कि एक ब्लैंकेट है उस पाप को ढांप लिया है उसने.
That means it, if you remove the blanket, everything is evident.
और इसका मतलब कि अगर ब्लैंकेट को हटा दिया जाए तो पाप सबके सामने दिख जाएगा.
So that means he had that remembrance of his sin, that he had sinned once. He was not free from that guilt and that guilt in his life.
और इसका मतलब वो पाप जो है वो दोष है उसके हमेशा मन में रहता है, उसको हमेशा वो याद करता है वो.
Everyone in the Old Testament lived in that type of life.
और पुराने नियम में हर व्यक्ति इसी प्रकार के जीवन में जिया.
So God had made a way through Jesus.
और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के लिए एक रास्ता बनाया.
It says in Hebrews 10,
इब्रानियों 10 अध्याय
11th verse.
उसका 11 वचन.
Says from the old, actually Hebrews is like comparing what was done in the Old Testament and what Christ did.
और इब्रानियों के अंदर जो पुराने नियम में जो था और नए नियम के अंदर अंतर करता है कि नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा क्या अंतर आया.
Many things are written that compare what was done in the Old Testament and what was the perfection in the New Testament.
और बहुत सारी चीजें जो पुराने नियम में की जाती थी और नए नियम में अब सिद्धता के स्तर में आ गई है उसके बारे में अंतर के बारे में लिखा गया है.
Here in Hebrews 10:11, every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sin.
और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है.
So the priest had to constantly offer sacrifices after sacrifices. But again, that sin is still there inside.
और याजक जो है वो हमेशा एक के बाद पर प्रतिदिन बलिदान चढ़ाता है लेकिन पाप वहीं पर है.
It was just covering, constantly covering, and it was not a full freedom.
और वहाँ पर पाप को ढापना इसी प्रकार से पाप से पूरी तरह से मुक्ति नहीं है.
So it says in the 12th verse, but he, that is Jesus, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God.
पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले की बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा.
And then it says in the 14th verse.
14 वचन.
By one offering he has perfected for all time those who are sanctified.
क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है.
So this is what Christ has done for us. We should value this so much.
और यही यीशु मसीह ने हमारे लिए कि इसका हमको इतना अधिक मूल्य करना चाहिए.
Imagine whenever we sin going and offering an animal, it's so difficult and so much, it was very expensive.
और ये याद करके देखिए कि जब कभी आप पाप करते हो उस पशु को लेकर जाके आप बलिदान चढ़ाते वो पशु है कितना वो कीमती वो होता है.
Here Jesus has come and offered that sacrifice was one time offered and it was fully satisfying to God.
और यहाँ पर यीशु मसीह ने आकर एक ही बार सर्वदा सबके लिए एक ही बलिदान चढ़ा दिया.
And that is so powerful that it can take away the sin in our heart.
और ये इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे हृदय से उस पाप को ले सकता है.
It removes the guilt from our lives completely.
और हमारे जीवन से पूरी तरह से पाप का दोष दूर कर सकता है.
If I am living in guilt and condemnation means I am living still in the Old Testament, Old Covenant.
और यदि आज भी अगर मैं दोष की भावना या दंड की भावना में जी रहा हूँ तो मैं पुरानी वाचा के अंदर जी रहा हूँ.
I need to see Jesus. I need to see His blood, the blood of Jesus that was shed for me.
और मुझे यीशु मसीह को देखना है. यीशु मसीह का लहू जो मेरे लिए बहा गया उसको मुझे देखना है.
We need to allow the devil to hide these precious truths.
और कई बार हमको शैतान को अनुमति नहीं देना है कि वो ये जो मूल्यवान सत्य हमारे से छुपा सके.
So I was just thinking about the things that the word of God, through the word of God, how many things are written about the value of the blood of Jesus.
और मैं सोच रहा था कि प्रभु के वचन के अंदर कितना अधिक यीशु मसीह के लहू को मूल्य करना उसके बारे में कितना अधिक लिखा गया है.
First thing, one of the things that we read is propitiation through the blood of Jesus.
और यहाँ पे लिखा है
appeasing, appeasement.
और प्रायश्चित यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रायश्चित होना.
When we sinned against God, God's wrath was burning against man.
और जब हम यीशु मसीह के विरोध में पाप करते तब परमेश्वर का क्रोध हमारे विरोध में आता है.
So that wrath is we cannot do anything about it.
और जो परमेश्वर का क्रोध है उसके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते.
Only thing that can be done is that something has to be offered that will please God.
और उसके बदले में कुछ तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना होगा जिससे कि वो प्रसन्न हो सके.
And that is what Jesus did on the cross.
और यही यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया.
When God looks at the blood of Jesus and he looks, when we have faith in the blood of Jesus, that wrath is taken away.
और जब यीशु मसीह उस लहू को देखता है, यीशु मसीह के लहू को देखता है, और जब परमेश्वर हमारे विश्वास को जो उसके लहू के ऊपर है, तब वो क्रोध पूरी तरह से ले लिया जाता है.
It is so valuable. We don't understand that. Sin can take us to hell.
और ये बहुत ही मूल्यवान सत्य है. आप नहीं जानते कि वो जो है पाप जो है हमें नरक ले जा सकता है.
And the blood of Jesus is so precious that it can take away that wrath.
और यीशु मसीह का लहू इतना बहुमूल्य है कि वो क्रोध को पूरी तरह से मिटा सकता है.
Even now also if you see other religions, they are trying to please God through some doing something like taking a dip in the river or something like that.
और आज भी दूसरे धर्मों के अंदर वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करे कर्मों के द्वारा, नदी में या के तीर्थ यात्रा, उन चीजों के द्वारा,
और मे बी ऑफरिंग गिफ्ट गिफ्ट टू गॉड,
और परमेश्वर को कोई तोहफा या गिफ्ट देने के द्वारा.
बट दैट नथिंग ऑफ दैट व्हाट एवर वी डू विल नेवर सैटिस्फाई गॉड.
और हम कुछ भी करें परमेश्वर को प्रति खुश कर, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते.
वी आर ऑन आवर ओन, वी आर इनकेपेबल ऑफ meeting God's justice.
और परमेश्वर का जो न्याय है उसको पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से अयोग्य हैं.
Only way that we can be accepted by God is believing in faith, putting a trust totally in the blood of Christ.
और एक ही चीज से हम इसे छुटकारा मिल सकता है कि यीशु मसीह के लहू के ऊपर पूरी तरह से भरोसा और विश्वास करने के द्वारा.
And that is why it's Jesus Christ came for a propitiation for our sin. That is to appease God through we are accepted by God because of that sacrifice that Jesus did for us.
और यीशु मसीह इसी कारण इस धरती पर आया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित बनकर वो बलिदान बन सके, ताकि पिता को प्रसन्न कर सके हमारे बदले में.
The blood of Jesus meets the level that God wanted to have in our lives.
और ये यीशु मसीह का लहू जो है वो परमेश्वर का जो स्तर जो हमारे जीवन में वो चाहता है उस स्तर तक वो हमको मिला सकता है.
Then another thing that the blood of Jesus does is, it's when we have that conscience is always pricking us.
और यीशु मसीह का लहू और एक चीज जो हमारे जीवन में करता है कि जो हमारा विवेक है हमेशा हमको वो बोध देता है.
Because it reminds us of the sin that we did.
और वो हमेशा हमको याद दिलाता है कि जो पाप हमने किए, हमारा विवेक.
But it says in Hebrews 9.
इब्रानियों 9 में इस प्रकार लिखा है.
9:13-14.
13 and 14.
For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish, cleanse your conscience from dead works to serve the living God.
और क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष छड़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो.
So we understand that it is comparing the old testament and the new.
और यहाँ पर हम देखते हैं इसको समझने के लिए जो पुराना है और नया नियम है उसकी तुलना करने के द्वारा.
The old testament was just outside cleansing.
और पुराने नियम के अंदर जो बाहरी जो है बाहरी रूप से शुद्धिकरण होता था.
So how much more will the blood of Christ cleanse your conscience?
और कितना अधिक परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को अति शुद्ध करेगा.
It removes that guilt of sin and it gives us that freedom.
और पापों का जो दोष है उसको दूर करके हमें वो आजादी देता है.
So we also read in Romans 3.
और रोमियो 3 अध्याय.
It says here that God display. It says here about justification.
और यहाँ पे धर्मी ठहराए जाने के बारे में लिखा है.
Paul starts, if you read the Romans from starting, if you read, Paul first shows how wretched we are. First thing is that we need to know how much wretched we are.
और पॉलुस जैसे इस रोमियो को लिखते हैं, शुरुआत से लेकर वो आरंभ जब करता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि कितने पाप में, कितने अभागे हम हैं.
First thing that as a Christian, when we come to Christ, is first we need to know how wretched and unworthy we are.
और पहली चीज जब यीशु मसीह के पास आते, इस बात को हमें एहसास करना पहली चीज है कि कितने पापी और अयोग्य हम हैं.
If we don't come to that, we will not understand the value of what Jesus did.
और अगर हम इस एहसास को नहीं करेंगे तो हम यीशु मसीह ने जो किया उसका मूल्य नहीं करेंगे.
We will take it for granted. We will not take it that seriousness will not come in us.
और हम हल्के से उन बातों को लेकर और गंभीरता हमारे जीवन में नहीं आएगी.
How impossible it is for us to please God and how much we are away from God and we always do what we want to do.
और कितना हम परमेश्वर से दूर है और कितना अधिक हम जो अपने आप में करना चाहते हैं वही हम करते रहते हैं.
We just do what we are not interested in. We always want to do what pleases us. We never want to do what pleases him.
और कभी भी हम जो हमें प्रसन्न होता है वही करने की कोशिश करते वो नहीं कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो.
So one more thing that Jesus did for us is justify us.
और दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हमको पूरी तरह से धर्मी ठहराया.
It is written in Romans 3:24.
और रोमियो 3:24 में लिखा है.
Student being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith.
और परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं.
So what we need to understand what is justification.
और हमको ये सीखना समझना है कि धर्मी ठहराया जाना क्या है.
The blood of Jesus not just cleansed us, but it has justified us.
और यीशु मसीह का लहू हमको केवल शुद्ध नहीं करता पर हमको धर्मी ठहराता है.
So when God looks at me, he looks as if I have never sinned.
और जब परमेश्वर जब मुझे देखता है वो इस प्रकार देखता है कि जैसे मैंने कभी पाप ही ना किया हो.
I need to understand the depth of this. So wonderful this is.
और इसकी गहराई मुझे समझना बहुत जरूरी कितना अद्भुत सत्य ये है.
That I am full of sin and always doing sin. God, when he forgives me and cleanses me, he justifies me as well.
और जब मैं पूरी तरह से पाप में हूँ, पूरी तरह से पाप में हूँ, तब पूरी तरह से उसका लहू मुझे शुद्ध करता है और मुझे धर्मी ठहराता है.
Actually, in propitiation, justice goes up to God.
और जब प्रायश्चित के अंदर जो है वो न्याय जो है वो परमेश्वर के स्तर तक जाता है.
And in justification, love comes down to us.
और उस धर्मी ठहराए जाने के अंदर परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर आता है.
And both are because of the blood of Jesus.
और ये दोनों चीजें यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव होती है.
It also says in Romans 5,
और रोमियो 5 में लिखा है
5:9. Here it says, but God demonstrates his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him.
जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे.
So we are justified by his blood.
यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं.
We are seen as if we have never seen. We are seen in Jesus. As if we have not done any no sin in our lives.
और हम यीशु मसीह के द्वारा हमें देखा जाता है इस प्रकार के जैसे हमारे पाप में हमारे जीवन में हमने कभी पाप नहीं किया है.
We can appropriate it only when we have faith and believe that what is written in the word is true and I believe that.
और ये तभी हमारे जीवन में संभव उस स्तर तक होता है जब हम परमेश्वर के लिखे हुए वचन के ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं.
I don't try to use my logic. I just believe yes, God has justified me through Jesus by his blood.
और मैं अपने तर्क वितर्क को उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया है.
Another thing that the blood of Jesus does is redemption.
और दूसरा जो यीशु मसीह का लहू जो काम करता है वो है छुटकारे का कार्य.
Redemption is being brought back.
और जो जो छुटकारा है या लौट आना है.
That's what it is actually is when we sin.
और जब हम पाप करते हैं
we become slaves to sin.
और तब हम पाप के दासत्व में आ जाते हैं.
In John 8:34 Jesus says that.
और यूहन्ना 8:38 में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है.
Truly I say to you everyone who commits sin is a slave of sin.
और यीशु मसीह वहां पे कहता है सच सच मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई पाप करता है वो पाप के दासत्व में है.
So when I even once if I sin, I become a slave to sin.
और एक बार भी यदि मैं पाप करता हूँ मैं पाप के दासत्व में जीता हूँ.
So the only way to redeem me means bring me back to God is through the blood of Jesus.
और एक ही रास्ता है कि वहाँ उस दासत्व से यीशु के पास वापस लौटने का वो है यीशु के लहू के द्वारा.
So there are many verses telling about the redemption in Christ.
और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो छुड़ौती हमें पाप से मिलती है उसके बारे में बहुत सारे वचन हैं.
There were shadows of the redemption in the Old Testament, but those were not the real thing that God wanted to do.
और पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि इस छुटकारे की जो छाया है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन वो सही चीज जो परमेश्वर करना चाहता है वो नहीं है.
It says in Hebrews 9,
इब्रानियों 9 में इस प्रकार कहता है
9:11-12.
इब्रानियों 9:11-12.
Here also it compares the old and the new testament.
और यहाँ पर भी पुरानी और नई वाचा जो है उसको अंतर यहाँ पर देखा जाता है.
Before if you read it's about the old testament, now it's about the new covenant it says, but when Christ appeared as a high priest for the good things to come, he entered through the great and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say not of this creation.
परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं.
In the 12th verse it says he has obtained eternal redemption for us.
और वहां पे लिखा है कि अनंत काल का छुटकारा उसने हमारे लिए प्राप्त किया है.
The blood of goats and calves will not give that it is just a temporary thing.
और बकरों और बछड़ों का जो लहू था वो टेम्पररी वो था.
But what Christ has done is eternal, like forever he has redeemed us from the...
जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उसके लहू के द्वारा किया वो पूरी तरह से अनंत काल के लिए हमें छुटकारा दिया है.
He has redeemed us from the power of the devil.
और वो शैतान का जो सामर्थ्य है उससे हमने उसने हमको छुटकारा दिया.
When Adam sinned, the devil had power over him, but when Christ came and he redeemed us, brought us back from that, from that, from that slave market of sin.
और जब आदम ने पाप किया तो शैतान ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया तो उस पाप के दासत्व से यीशु मसीह ने उसको वापस छुटकारा कर लिया उसका.
Even, Peter says about this.
और पत्रस इस बारे में भी कहता है.
He says we are not redeemed with gold or silver.
और वो कहता है कि हमारा जो सोने और चांदी से हम नहीं छुड़ाए गए,
but with the precious blood of Jesus.
लेकिन यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं.
Then when we get to heaven.
और जब हम स्वर्ग में जाते हैं,
we will see one thing, that all of the people in heaven are all they have not come there because of their own merit.
और हम देखेंगे कि स्वर्ग में आए जाने वाले सारे लोग वहां पर अगर आए हैं तो खुद के योग्यता से वहां पर नहीं पहुंचे.
They will always have that in our hearts. Jesus blood has redeemed me, that's why I'm here.
और वो अपने हृदय में इस प्रकार कहेंगे कि यीशु के लहू ने मेरा छुटकारा किया, इस कारण मैं यहां पर हूं.
The people who were slaves to sin become saints.
और जो पाप के दासत्व में थे वो संत बन चुके हैं.
Means I know that it is not my own, nothing of my own. It is Christ who has done it.
और मैं ये जानता हूँ कि मेरे अपने खुद से ये कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ पूरी तरह से यीशु ने मेरे जीवन में इसको किया है.
That is why when there is a song that is sung in heaven.
और इसलिए स्वर्ग में इस प्रकार एक गीत गाया जाता है.
And the song that says, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals."
और वहां पे लिखा है कि तू योग्य है उस मोहरे को खोलने, उस सील को खोलने के लिए.
एंड बाय योर ब्लड यू रैंसम पीपल फॉर गॉड फ्रॉम एवरी ट्राइब लैंग्वेज एंड पीपल एंड नेशन.
और हर भाषा हर जाति में से अपने लहू के द्वारा तू लोगों को छुड़ाता है.
So that song is always, now also it will be there, and in heaven also we will have that song, Lord, you have redeemed me, you have ransomed me.
और पूरी तरह से अभी इस संसार के अंदर स्वर्ग में भी यही गीत होगा कि प्रभु तूने मुझे पूरी तरह से छुटकारा दिया है.
Then one more thing that the blood of Christ does is brings us close to God.
और एक चीज जो यीशु मसीह का लहू करता है वो हमें परमेश्वर के और नजदीक लेकर आता है.
When Adam sinned, he went far from God, as we heard earlier.
और जैसे हमने पहले सुना, जब आदम ने पाप किया वो परमेश्वर से बहुत दूर चले गया.
So the blood of Jesus brings us back to God.
यीशु मसीह का लहू हमें वापस परमेश्वर के पास लेकर आता है.
There is nothing to separate us from God. We can have that closeness to God.
और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो नजदीकी हमारे पास वो होगी परमेश्वर के साथ.
Because God sees the blood and he is satisfied.
और जब ये परमेश्वर जो यीशु का लहू देखता है उससे वो संतुष्ट हो जाता है.
So we can have confidence to come to the holy place.
और हम उस पवित्र स्थान में एक हियाव के साथ पहुंच सकते हैं.
It says in Hebrews that we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus.
और इब्रानियों में जैसे लिखा है कि अब हम उस बड़े हियाव के साथ महापवित्र स्थान में अभी पहुंच सकते हैं.
In the Old Testament they couldn't have that confidence to come to Jesus, come to God.
और पुराने नियम के अंदर उनके पास वो हियाव नहीं था परमेश्वर के नजदीक आने का.
When we see what the blood of Jesus does, we are so freed from all the things that separate us from God.
और जब हम जान जाएंगे कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है तो वो सारी चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर करते उससे हम छुटकारा प्राप्त करेंगे.
We can have God just like we are talking to some like a father, we can talk to him.
और जैसे एक पिता से बात करते उस प्रकार हम परमेश्वर से बातें करेंगे.
It's not so much far away that I'm not sure whether he will hear me.
और वो इतना दूर नहीं है कि मैं नहीं जानता कि काश वो मेरी सुन पाता या नहीं.
It says in Hebrews 9.
इब्रानियों 9 में लिखा है.
9:11 says, when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, but through the and not through the blood of goats and calves, but through his own blood. He entered the holy place once for all.
परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया.
This is what Christ has done. He has opened the way for us so that we can come to the most holy place.
और यही यीशु मसीह ने किया, उसके लहू के द्वारा उस दरवाजे को उसने खोल दिया ताकि उस दरवाजे से हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके.
But we need to remember that as brother said that we cannot take the blood of Jesus as like very common.
और जैसे हमने सुना कि हम यीशु मसीह के लहू को हल्के से नहीं ले सकते.
We need to value it so that we don't just take it very for granted.
और हम उसको हम लोग को बहुत ही वैल्यू करना है ताकि उसको हम हल्के से ना लें.
That is why we need to know the value of the blood of Jesus.
इसके लिए यीशु मसीह का जो लहू है उसका मूल्य जानना बहुत जरूरी है.
That is why in Hebrews that what we read now it is below if you see it's written that Christ died only once as an offering for sin.
और जैसे हम उसके नीचे के वचनों में जब हम पढ़ते कि एक ही बार यीशु ने पापों के लिए उस एक बलिदान को उसने दे दिया.
And after that the judgment.
और उसके बाद न्याय.
And he is not coming to deal with sin again. Now it is only judgment.
और अभी
after
वो पाप,
that, afterwards.
और उसके बाद वो पाप से समझौता या पाप के लिए वो नहीं आ रहा है या पाप से छुड़ाने के लिए, बट अब वो न्याय करने के लिए आने वाला है.
We need to have that holy fear in our lives always.
और हमारे अंदर हमेशा वो पवित्र भय हमारे जीवन में होना चाहिए.
In 1 John we know that verse, very common verse that we say that the blood of Jesus cleanses us from all sin.
और जैसे पहला यूहन्ना के अंदर वचन सभी जानते हैं कि यीशु का लहू में सारे पापों से शुद्ध करता है.
Says if we walk in the light as he himself is in the light.
और जैसे हम वो ज्योति में उस प्रकार हम ज्योति में चलेंगे.
And as we confess our sins when God shows us in the light our sins we confess it the blood of Jesus cleanses us.
और जैसे परमेश्वर की ज्योति उस पाप को हमारे जीवन में प्रकट करता है हम उसको मान लेते हैं और पूरी तरह से उसको यीशु का लहू में शुद्ध करता है उससे.
Actually, when we only speak about the blood of Jesus, but we need to know the so many things about the blood of Jesus that God has written in His Word, so that we will value it more and we remember it.
और जब हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बांटते हैं, तो बहुत सारी चीजें में वचन से देखने की जरूरत है ताकि हम उसका मूल्य कर सकें.
Because in Revelation it says they overcame Him because of the blood of the Lamb. That's the first thing that it says there.
और प्रकाशित वाक्य में पहली चीज लिखी है कि मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने विजय प्राप्त किया.
So that means I confess. That the blood of Jesus has cleansed me when I confess my sin.
और जब मैं अपने पापों को मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ, तो मैं यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ.
The devil cannot accuse me anymore.
और अभी शैतान जो है मुझ पर दोष नहीं लगा सकता.
I'm free from all accusation and condemnation from my life.
और सारे दोष और दंडाग्नियां जो मेरे जीवन के अंदर उससे पूरी तरह से मैं आजाद हो चुका
हूं. That doesn't mean he can still whisper, but I again talk back to him and say that the blood of Jesus has cleansed me. You devil, you flee from me in the name of Jesus. Rebuke him.
और हो सकता है कि वो अभी भी शैतान आकर हमारे कान में फुसफुसा सकता है और बातें हमें दंड की आज्ञा वो भावना ला सकता है, लेकिन हमें उसको कहना है कि हे शैतान यीशु के नाम से उसे हमें डांटना है और दूर करना है.
Another thing is that we have that peace with God.
और दूसरी चीज जो है हम यीशु परमेश्वर के साथ उस शांति के अंदर उस मिलाप के अंदर आ जाते हैं.
पीस व्हिच वाज लॉस्ट ड्यू टू सिन इज रिस्टोर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस.
और वो शांति जो पाप के कारण खो गई थी यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब वो वापस आ गई है.
इट सेज वी कैन अप्रोच बोल्डली द थ्रोन ऑफ ग्रेस नाउ.
और वहां पे लिखा है कि अब उस सिंहासन के सामने हम बहुत ही हियाव के साथ निडरता के साथ हम जाते हैं.
द वन हु इज द वर्स्ट ऑफ सिनर्स कैन अप्रोच द थ्रोन ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस.
और सबसे बदतर पापी भी है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बड़े हियाव के साथ उस सिंहासन के सामने जा सकता है.
Acknowledge that we are terrible sinners and worth only hell. Then God can help us to come to Him.
और जब हम इस चीज को एहसास कर ले कि हम बहुत ही बदतर पापी और नरक जाने के योग्य, तब वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा.
Let us always remember this and let us always have that in our hearts and let us thank God for what He has done for us.
और इस प्रकार का हृदय हमेशा हमारे लिए हमारे हृदय में हम रखे, हमेशा धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया उसके लिए.
Whenever we sin, let us run to God and confess our sins and come back to His presence.
और जब कभी हम पाप करते हैं, तुरंत उठकर उसके पास दौड़ कर जाए, हमारे पापों को मानकर मान ले.
Because if we remain in that condemnation, in that sin, then we will fall more into sin.
और अगर उसी पाप के अंदर, उसी दंड की भावना के अंदर हम बने रहेंगे, तो और भी अधिक पाप में गिरते जाएंगे.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें.
Really, it is a good message. एक अच्छा एक वचन हम सब के लिए था, खास करके जो शुरुआत भाई किरण ने किया था. वो जो ड्रेस के बारे में, कितने बार हम लोग चीज़ों को साधारण रूप से लेते हैं. हाउ मच टाइम वी टेक थिंग्स वेरी कैजुअली. काफ़ी बार हमारे साथ ही होता ही है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ अभी जैसे कि अगर किसी ने पेंसिल बनाया है तो रबर भी साथ में है, और जब तक रबर साथ में रहता है वी टेक दैट अपॉर्चुनिटी, गलती हो गया तो रब करते जाते हैं, रब आर मिस्टेक्स. लेकिन अगर रबर ही नहीं होता, एक ही बार लिखना होता, तो हम कितने आप सोचेंगे लिखने के लिए. फॉर एग्जांपल यू हैव अ एटीएम कार्ड राइट, और यू हैव अ नेट बैंकिंग पासवर्ड. अगर आपको पता है तीन बार या चार बार में लॉक हो जाता है, तो आप पहले बार में कितने ध्यान देते हो? इफ यू नो द फर्स्ट टाइम इट इज रॉन्ग, द सेकेंड टाइम यू आर वेरी केयरफुल बिकॉज यू नो इट इज गेटिंग लॉक्ड. सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास अगर चांसेस कम रहता है तो हम बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं. और वही जगह में जब हम अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं, हम जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, द ग्रेस ऑफ गॉड व्हाट वी हैव सो फ्रीली लाइक दैट वन बॉटल, वी डू नॉट नो द लेवल ऑफ इट बिकॉज एवरी वन हैज गॉट डिफरेंट लेवल. कभी कभी किसी का बॉटल एकदम भरा हुआ होगा, किसी का मतलब वो इस्तेमाल के यूज करके दे हैव गॉट द ग्रेस. लेकिन अगर उसको खत्म कर देंगे, इफ यू देन द वैल्यू ऑफ जीसस ब्लड इज ऑफ नो यूज. जैसे कि हमने हिब्रूज का देखा था 9 में, व्हाई एक्चुअली द ब्लड ऑफ जीसस इज रिक्वायर्ड, प्रभु यीशु मसीह का लहू क्यों चाहिए? इट इज टू वर्शिप द लिविंग गॉड. इट इज देयर इन हिब्रूज 9:14. इट सेज सो दैट वी कैन वर्शिप द लिविंग गॉड. एंड जबकि हमारे पास वी हैड नो अपॉर्चुनिटी और नो वे लाइक टू कम एंड वर्शिप दैट, टू वर्शिप द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा क्या बोलते हैं ऐसियत नहीं था. देयर वाज नो वे लाइक, बट इट इज द ब्लड ऑफ जीसस व्हिच गेव अस दैट रोब ऑफ राइचियसनेस. उसने हमें उस धार्मिक वस्त्र दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं. एंड एज ब्रदर बिजू सेड नो लाइक गॉड गेटिंग एंग्री, इफ गॉड गेट्स एंग्री व्हाट हैपेंस इन द ओल्ड टेस्टमेंट. इफ यू गो टू हिब्रू जेनेसिस चैप्टर, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, देयर इट इज दैट इट वाज वेयर यू नो गॉड रिपेंट्स दैट ही मेड. He repented. And in verse Genesis 6:6, it says that Lord was sorry that he had made them. And it was broken. Imagine what God would have gone through. Like it is like something, like you have worked throughout the day. Say you have worked. Humne pure din kaam kiya hai. Aur pura din kaam karne ke baad, hume uska koi phal nahi nazar aata. We don't get any fruit of out of it. What happens to us? We are totally broken down because that whole day we have wasted and nothing has come. No, there was no outcome. And you get very much discouraged. Similarly, how much discouragement might have come inside God, the Father who's created us and this universe, when man sinned against and lived according to his own life and his own ways. Another thing is like we meditated in our weekly meeting also last week. That is Romans chapter 12. Actually, what is that God is actually expecting and how we need to be? When we really value the blood of Jesus Christ, in Romans 12, it says that we need to be blameless and not to conform ourselves to the world. Matlab hamare andar koi aisa जितना हो सके उतना हमारे अंदर धाग नहीं होना है, सो दैट वी कम क्लोज टू गॉड इन दैट प्योर हार्ट एंड माइंड विदाउट एनी गिल्ट. हमारे अंदर कोई गिल्ट नहीं होना है. एंड देयर शुड बी नथिंग लाइक यू नो विच कीप्स अस अवे एंड टेक्स अस बैक. द ओनली थिंग जो बात हमें जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं आने से रोकता है, वो है एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी बात, एक गलती जो हमें परमेश्वर के सम्मुख में जाने से रोकती है. एंड यहाँ पे यू नो इन 12 इट सेज लाइक वी हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ गॉड एज ब्लेमलेस एक्सेप्टेबल एंड वेयर वी रियली प्लीज गॉड एंड वेयर गॉड इज हैप्पी अबाउट मी दैट ही हैज क्रिएटेड मी. मेनी टाइम्स हाउ मच टाइम्स आई माइट हैव फॉलन डाउन, बट फॉलिंग डाउन इज नॉट दैट, बट हाउ फास्ट आई कम बैक, कितना जल्दी मैं उससे उबर आता हूँ और परमेश्वर से माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ और उसके सम्मुख में आता हूँ. Really valuing that blood of Christ. And ek baat aisa hai which I repeated, I said last on the Wednesday meeting also. I really liked the way Brother Zach said about you know this particular chapter about one thing. It's like ek aisa hai ki husband and wife is there, and we take it both independently. Say wife does everything for the house. She earns for the house. She takes care of the house. She does all the housework. She cooks very good food. And she maintains everything. But she does everything for the house and the house is happy. But the only thing is, if she gives her body to someone else, how will it be? That's what Zach explained about it. Similarly, if the husband is giving everything, whatever is required, is fulfilling all the needs. Maybe it could be whatever wife wants in terms of shopping or in terms of the children's need. But if he gives his body to some other woman, how will it be? That's what in Romans 12 it says, it to be holy and acceptable and blameless. Where if we really give our body in a right way, only to God. Because he is the one who has created us and I need to keep that clean. I cannot just say that I am doing everything and I'm following. It's like how I really dedicate my life and how I live, and I value that blood. Us lahu ko kitna main mol deta hu, wo zaruri hai. So really God lead us and help us, as we have learned, and the Spirit is teaching us, the Spirit to help us in the days to come, that we grow more and be strong.
मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि जैसे मैं स्टोरी को पढ़ रहा था और तैयार कर रहा था बच्चों के लिए, मैं सोच रहा था कि एज इफ ये सबसे पहले मेरे लिए है, दिस स्टोरी इज फॉर मी. जैसे ऐना के बारे में हमने सुना, एक स्टोरी है कि जैसे उसने बहुत ही कैजुअली उस बॉटल को लिया और उसमें ड्रेस को जो उसकी मॉम ने उसको डेथ बेड पर दिया था उसने बहुत ही कैजुअली लिया. उसके बाद वो पूरी तरह से एक ऐसे स्टेट में आ गई जहाँ पर उसने पूरी तरह से उस मॉम का जो कॉस्ट था, जो उसने उस ड्रेस को बनाया था बॉटल में जो दिया था, पूरी तरह उसने डिसवैल्यू कर दिया. और कई बार मैं अपने जीवन को देखता हूँ कि प्रभु सच में ये स्टोरी सबसे पहले बच्चों से पहले मेरे जीवन में लागू होती है कि इट अप्लाइज इन माई लाइफ लॉर्ड सो मेनी टाइम्स. लॉर्ड मुझे पता है कि लॉर्ड आई नो द प्रिंसिपल कि जब मैं गिरता हूँ तब मुझे खड़ा होना आना है. बट लॉर्ड सम टाइम्स आई हैव टेकन कैजुअली, कई बार उस बॉटल जीसस का ब्लड है उसको मैं कैजुअली लेने की कोशिश करता हूँ. और मैंने अपने आप में देखा कि प्रभु जैसे उस ऐना ने बाद में उसकी मॉम को वैल्यू किया, उस बॉटल में जो सॉल्यूशन था उसका वैल्यू किया, एंड शी रिमेंबर्ड, उसकी मॉम को याद करती, जब कभी उस कपड़े को पहनती थी मॉम को याद करती थी. वैसे जब मैं इस जीवन को जीता हूँ क्या मैं उस रेवरेंशियल फियर में, दैट्स द मेन थिंग मेरे अंदर आ रही, रेवरेंशियल फियर यीशु के लहू के प्रति, यीशु के प्रति क्या मेरे जीवन में हमेशा रहता है. वो बहुत ही मुख्य बात मेरे जीवन के अंदर मैं पाता हूँ कि प्रभु ये सारी चीज़ें आत्मिक बातें ठीक है, लेकिन प्रभु जब मैं चलता हूँ क्या मैं बहुत हल्के से इन चीज़ों को ले रहा हूँ. और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 17 वचन से आगे. पहला पत्रस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:17-18. और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय के साथ बिताओ. यहाँ पे लिखा है कि हम सबों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, पत्रस लिखता है कि अगर हम परमेश्वर को एक पिता के रूप में बोलते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उसको पिता कहते हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो वहां पे लिखा है उसके एंड में 17 में, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ. दूसरे ट्रांसलेशन में इंग्लिश में रेवरेंशियल फियर. तो अगर मैं परमेश्वर को पिता करके जानता हूँ, वो मेरा पिता है, एंड आई एम एंजॉइंग ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ गॉड बींग अ फादर ऑफ माइन, तो अगर वो है तो फिर ये लास्ट पोर्शन भी उसके अंदर होना बहुत जरूरी है कि रेवरेंशियल फियर उस पिता के प्रति होना बहुत जरूरी है. अगर रेवरेंशियल फियर नहीं है उसके लहू के प्रति या परमेश्वर के प्रति, तो मेरा दावा करना, क्लेम करना कि गॉड इज माई फादर इज फेक, क्योंकि मैं उसको आदर नहीं दे रहा हूँ इस वचन के अनुसार, और केवल शब्दों के अंदर बोल रहा हूँ कि ही इज माई फादर, बट वेर इज द वो रेवरेंशियल फियर, वो भय परमेश्वर के प्रति मेरे लाइफ में नहीं है आज. और आगे 18 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है. तो यहाँ पे तीन चीजें लिखी, सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं से, और एक वर्ड यहाँ पे लिखा है कि बहुमूल्य लहू के द्वारा. जब इस पत्र से इसको लिखता है यहाँ पे लहू को बहुमूल्य करके दर्शाता है. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अगर मेरी कोई चीज कहीं पर छूट जाती है, अगर वो 10 रुपए की है, 50 रुपए की है, तो मैं घर जाकर उसको वापस लेने नहीं आऊंगा, क्योंकि उसका मूल्य इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उतना पेट्रोल ला के डाल के वापस आना वो मेरे लिए नहीं। लेकिन अगर उसका मूल्य बहुत ज्यादा है, अगर वो 10,000 की है, 50,000 की कोई चीज है, कुछ गोल्ड का कुछ गिर गया है, तो मैं जरूर वापस आऊंगा चाहे कितना भी पैसा हो। इसका मतलब कि वो चीज मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और पत्रस यहाँ पे लिखता है कि सोने चांदी अथवा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, लेकिन हमारा जो छुटकारा है मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटना पिछले वीक में हुई जहां पे मैंने देखा कि कौन सी चीज मेरे लिए बहुमूल्य है, सोने या चांदी या यीशु का बहुमूल्य लहू। अभी बीच में लास्ट वीक के अंदर एक टेनेंट हमारा जो घर है वो खाली, उसको करवाने का था और वो खाली नहीं कर रहा था, और मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉस जा रहा था, 15 दिन का रेंट वो नहीं दे रहा था। और जब मैं उससे बात कर रहा था, मैं सच था मेरी जगह पे, मेरे एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ था, बट वो पैसे देने के लिए राजी नहीं था। लेकिन मैं उसे बहुत ही रूडली बात करके, जैसे कि मुझे वो पैसे, वो लॉस बेयर नहीं करना चाह रहा था, और मैं बहुत ही रूडली आधा पौना घंटा बात करके मैंने पूरा उससे इतना डिबेट उससे किया कि नहीं ये हो सकता है, ये लिखा है वो लिखा है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज दैट 10-15,000, उससे मैं उसको खोना नहीं चाह रहा था। और जब फोन हो गया उसके बाद मैं इतना निराश जैसे हो गया, और पूरा दोपहर में मैंने कैसे बात किया उससे, और वो मेरा बर्थडे था वो दिन, और मैं पूरा दिन दोपहर से शाम तक मैं पूरा उसी के अंदर, मैंने ठीक से बात नहीं किया, एम आई रियली मैं यीशु मसीह के जैसा वहां पर बना क्या, नहीं थोड़े पैसे का लॉस जा रहा था, बट एक अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं यू आर राइट, तुम्हारा एग्रीमेंट है, यू नो यू कैन क्लेम दैट मनी। बट जैसे मैंने उससे बात किया कि नहीं तुम्हें देना ही है पैसे कैसे भी करके, फिर मैंने उसको बाद में सॉरी लिखा मैसेज के अंदर। बट देन ये वचन को जब मैं पढ़ा, पत्रस के लिए बहुमूल्य क्या था, यीशु का लहू था। वो लिखता है सोने और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु के बहुमूल्य लहू से। तब मैंने जाना कि प्रभु मेरे लिए यीशु का लहू बहुमूल्य शायद आज के डेट में नहीं है, मेरे लिए पैसा शायद कुछ लॉस में अगर हो रहा है मुझे पैसों का, तब मेरे लिए वो मूल्यवान है। मैं देखता हूँ मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने मिलती है प्रभु की, ऑफिस के अंदर भी देखने मिलता है कि एक डर रहता है कि एक अच्छा नाम कहीं खो ना दूं, बॉस के सामने मेरा अच्छा इमेज है कि अच्छा काम करते वो कहीं खो ना दूं, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक मूल्यवान हो जाता है कि मेरे को एक हमेशा एक अच्छा इमेज कलीग्स के सामने कि ये हार्डवर्किंग है, ये एक यू नो बहुत अच्छे से काम करता है ये, या कलीसिया के अंदर भी हो सकता है कि एक आत्मिक लड़का है या आत्मिक एक व्यक्ति है, उसका इमेज बनाए रखना वो भी मेरे लिए बहुमूल्य बन सकता है। और मैं बहुमूल्य जो होना चाहे पत्रस की नजरों में वो शायद खो सकता हूँ, वो है यीशु का लहू। और इस चीज से, इस स्टोरी से खासकर मुझे इतना चैलेंज मिला अपनी लाइफ में कि प्रभु सोना चांदी शायद मेरे लाइफ के अंदर आज भी मूल्यवान है, शायद वो नाम हो सकता है या आत्मिक एक दिखावा हो सकता है या एक नाम हो सकता है। लेकिन इस वचन को मैं सच में अपने जीवन के लिए लेना चाहता हूँ, आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आइए हमारे उस मूल्यवान चीजों के अंदर हम सबसे पहले यीशु के लहू को रखें। कई बार हमने शायद आज तक उस पैसों को, मेरे जीवन में मैंने देखा, या नाम को रखा या और किसी चीज को, लेकिन उससे हमेशा मैंने खोया है। लेकिन पत्रस ने उस बहुमूल्य चीज को, जैसे आज वचन में उस स्टोरी में हमने यही सिखाया कि आए हम यीशु के लहू का मूल्य करें, जो उसने किया है यीशु मसीह के द्वारा, उस लहू ने मेरे लिए चुकाया है। कुछ भी हो जाए, चाहे शायद मैं उस समय बहुत ही शांति से उस मैटर को सॉल्व कर सकता था, बट मेरे लिए उस लहू को मूल्यवान होना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू टेक दिस सीरियस कि अगर मैं अंत में परमेश्वर को पिता करके पुकारना चाहता हूँ, ही इज माई डैडी, देन आई शुड हैव दैट रेवरेंशियल फियर, उस भययुक्त कि वो आदर युक्त भाई मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। देन ओनली आई एम अ ट्रू डिसाइपल, कि मैं परमेश्वर को अपना पिता कह सकता हूं।
आई जस्ट रीडिंग द वर्स इन रेवलेशन चैप्टर 4, नो चैप्टर 5,
प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय
वर्स 9, इट सेज एंड दे सैंग अ न्यू सॉन्ग सेइंग वर्दी आर यू टू टेक द बुक एंड टू ब्रेक इट्स सील, you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation.
और ये गीत गाने लगे, इस पुस्तक को लेने, इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है।
Something which I have not taken it many times in my heart. I have many times thought about Jesus' blood which cleanses me.
और कई बार मैंने इस कोई चीजों को मेरे हृदय में नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो मुझे शुद्ध करता है,
दैट आई हैव that I know.
वो मैं जानता हूँ.
That I understood.
मैंने उसको समझ लिया है.
And that I always take it very seriously.
और उसको मैं गंभीरता से हर समय लेता भी हूँ.
But here, what they were singing is the blood of Jesus which purchased them.
और यहाँ पे यीशु का लहू जिसने उनको खरीद लिया है.
So that is, if I know that Jesus' blood has purchased me.
यदि मैं इस चीज को जान जाऊंगा कि यीशु के लहू ने मुझे खरीद लिया है.
It is not just which something which I apply where it forgives my sin and the rest of the part I leave aside. It doesn't work like that.
और इस प्रकार वो कार्य नहीं करेगा कि जब मैं पाप करता हूँ तब थोड़ा सा लहू उसमें से अपने जीवन में लागू करता हूँ बाकी का क्षेत्र छोड़ देता हूँ. इस प्रकार वो काम नहीं करेगा.
Have I given my body to Jesus?
और क्या मैंने अपना शरीर यीशु मसीह को दिया है?
Because the blood of Jesus has purchased me.
क्योंकि यीशु के लहू ने मुझे खरीद लिया है.
I cannot take part of the blood of Jesus to forgive me and I don't give my body to Jesus rest of the time.
और मैं यीशु के लहू से एक भाग लेकर एक भाग लेकर अपने आप को शुद्ध करूं और बाकी का मेरा शरीर का भाग उसको ना दूं तो ये नहीं काम करेगा.
It is for those who have given themselves to Jesus that the blood of Jesus will cleanse because he has purchased us.
और क्योंकि यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया है उन लोगों के लिए ही वो लहू काम करेगा जिन्होंने अपना शरीर जो है यीशु मसीह को पूरी तरह से दे दिया है.
That is why in 1 Corinthians chapter 6
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय
In verse 19 and 20 it says
19 aur 20
it says or do you not know that your body is a temple of the holy spirit who is in you
aur kya tum nahi jante ki tumhari deh pavitra atma ka mandir hai jo tum mein basa hua hai
whom you have from god and you are not your own
aur tumhe parmeshwar ki or se mila hai tum apne aap ke nahi ho
and verse 20 says For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body.
और 20 वचन क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो.
So it is this body has been purchased by God.
और इसका मतलब कि ये देह जो हमारी है यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है.
It is he has paid a great price for that.
और उसके लिए एक बड़ा दाम एक बड़ी कीमत उसने चुकाई है.
So as I come to Jesus for the cleansing of sin.
और जैसे मैं यीशु मसीह के पास अपने पापों के शुद्धिकरण के लिए आता हूँ.
I need to realize that this body himself he has purchased it by his blood.
और तब मुझे ये जानना जरूरी है कि ये पूरा शरीर जो है उसने अपने लहू से अपने लिए खरीद लिया है.
That means I cannot look with my eyes what I want to look at.
और इसका मतलब ये है कि जो मेरी आंख से मैं देखना चाहता हूँ वो मैं नहीं देख सकता.
Well, I cannot speak with my tongue which I want to speak.
और जो मैं अपने ज़बान से बोलना चाहता हूँ वो मैं नहीं बोल सकता.
I cannot react in a way that I want to.
और जैसे मैं प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ रिएक्ट करना चाहता हूँ वैसे मैं रिएक्ट नहीं कर सकता.
Because this body belongs to Jesus Christ.
क्योंकि ये शरीर जो है यीशु मसीह का है.
And when we know that, then we can come to him for grace.
और जब इस चीज को हम जान जाएंगे तब अनुग्रह के लिए उसके पास हम जा पाएंगे.
That is one thing we need to understand.
और एक चीज को हमें सीखने की जरूरत है.
And second thing is the blood of Jesus gives us access to God.
और दूसरी चीज यीशु मसीह का लहू जो हमें पिता के पास जाने के लिए एक पहुंच बन जाता है.
And that means in the old covenant maybe they could come to God on Saturdays and they could be happy.
और पुरानी वाचा के अंदर जो है वो शनिवार के समय वो परमेश्वर के पास आते थे और फिर वो खुश हो जाते थे.
That means they cannot live constantly in the presence of God.
इसका मतलब वो निरंतर लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते थे.
They had to sometimes be happy when they are in the synagogue and they praise God and that time they are happy.
और जब वो आराधनालय में है मंदिर में है जब प्रभु की आराधना करे तब वो खुश होते हैं.
They are in the presence of God.
तब वो प्रभु की उपस्थिति में है.
And that's why David writes lot of psalms where he says I was glad when they said let us come to the presence of God.
और जैसे दाऊद भी कहता है कि जब वो कहता है कि मैं खुश हो गया जब उन्होंने कहा कि चलो हम प्रभु के भवन में चले.
एंड बट फॉर अस 24 आवर्स एंड ऑल थ्रू आउट द वीक आई कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड.
लेकिन हमारे लिए 24 घंटे और लगातार पूरे सप्ताह भर हम प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं.
सो दिस इज वन थिंग व्हिच ब्लड ऑफ जीसस मेड पॉसिबल.
और ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हुआ है.
आई डू नॉट हैव टू लिव अप एंड डाउन.
और हमें ऊपर नीचे इस प्रकार का जीवन जीने की जरूरत नहीं है.
दैट मीन्स एनी टाइम आई स्लिप अप इमीडिएटली आई कैन गो इन अगेन एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड.
और कभी भी अगर फिसल के गिर जाता हूँ खड़े होकर मैं उसकी उपस्थिति में तुरंत जा सकता हूँ.
आई डोंट हैव टू वेट फॉर अनदर वीक.
और पूरे एक सप्ताह भर रुकने की मुझे जरूरत नहीं है.
इट इज विद इन वन सेकंड आई कैन गो टू गॉड एंड इमीडिएटली कन्फेस माय सिन कम बैक टू फेलोशिप विद हिम.
और एक ही सेकंड में खड़े होकर अपने पापों को मानकर उसके पास जा सकता हूं और उसके साथ संगति में वापस लौट सकता हूं.
इफ आई हैव स्पोकन समथिंग बैड और रूडली इमीडिएटली आई कैन गो एंड अपोलोजाइज टू अ पर्सन एंड कम इन फेलोशिप विद गॉड अगेन.
और अगर किसी व्यक्ति के साथ क्रूरता और बुरी तरह से मन में बात किया तुरंत माफी मांगकर तुरंत उस परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता हूं संगति में.
दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू.
और यही परमेश्वर चाहता है हम करें हमारे जीवन में.
I praise God for what I've heard. It was a great reminder for me.
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही याद करने की एक बात था.
The last week also I was thinking about on the same lines.
और पिछले हफ्ते भी मैं इसी चीजों के ऊपर, इसी बातों के ऊपर मैं सोच रहा था.
And you know there are many instances where you know I actually got angry, or you know there was a temptation to lust, or you know a moment to feel proud about something.
और ऐसे कुछ घटनाएं हुई कि जब मैं गुस्सा हुआ थोड़ा सा चीजों के ऊपर, मतलब मेरा मतलब गुस्सा भी हुआ, कुछ अभिलाषाओं किया और मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा प्राइड भी आ गया था, घमंड आ गया था.
And I know that is a sin. These things are a sin, but I still give in to it. And then the next moment, I'm like, "Sorry, God, you know, forgive me."
और मैं मुझे पता था कि ये पाप है, और फिर मैं परमेश्वर से उसके बारे में मैं अंगीकार किया और माफी मांगा.
I know, you know, these things are sin. And then the next moment, or you know, maybe in half an hour, I'm like, you know, "Sorry, Lord, I have sinned." And I was just thinking so lightly. I take the, you know, blood of Christ.
और बहुत हल्का तरीके से मैंने परमेश्वर को, परमेश्वर माफी मांगा, और इस बात के ऊपर मैं सोच रहा था कितना हल्का सा मैं चीजों को लेता हूँ.
Is it just, you know, like a tap water which I can use anytime, or you know, is it something precious to me?
और ये क्या एक जो पानी जैसा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही बहते हुआ पानी, मतलब जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें.
Until I know the preciousness of you know what Jesus has done, where he shed his blood, I will, you know, never be you know satisfied or never know what he has done for me.
और जब तक मैं उस चीज को नहीं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, तब तक मैं उस इस बात के ऊपर मैं वो तृप्तता नहीं पा सकता हूं.
One verse was coming to me as brother Biju was sharing.
और एक वचन जैसे भाई बिजु ने बांटा था उसके ऊपर,
Romans 5:19,
रोमियो का 5:19,
for as through the through one man's disobedience many were made sinners, even so through one man's obedience many will be made righteous. So here it clearly says through Adam's sin, you know, all of us were made sinners.
और यहाँ पे बहुत ही साफ लिखा गया है कि आदम के पाप के कारण सब लोग पापी ठहर गए.
And through one man's obedience, that is Jesus' obedience, we were all made righteous.
और प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको पूरा तरीके से धार्मिकता मिल गया.
It was not Jesus's will, but you know, it was God's will. But Jesus, it says here, through His obedience, we were made righteous.
और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञा पालन करके चीजों को, मतलब पिता का आज्ञा पालन किया, उसके उस कारण हमको धार्मिकता मिला.
And what is this righteousness here? Is nothing but you know. We were made acceptable in you know God's eyes, or you know we were made right standing in His eyes.
और ये जो ऐसी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक सही जगह हमें दिया परमेश्वर के समुख में समुख.
That when Jesus died on the cross, we were made acceptable. That is what you know the blood of Christ has done.
और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जब जीवन उस कलवरी क्रूस के ऊपर दिया, तभी प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें अपनाया.
It gave us direct access to God.
और हम सीधे प्रभु पिता के पास जा सकते हैं.
In the olden days, if we read the Old Testament, we know that you know they used to sacrifice you know cattle you know to just so that you know that God could forgive the sinners.
और हम पुराने नियम में देखते हैं कि वो लोग होम बलि चढ़ाते थे और ताकि उनका पाप क्षमा हो सके.
They used to sacrifice, you know, cattle which was unblemished, without any stain or spot or any disease.
और ऐसे पशुओं को वो देते थे जिसके अंदर कोई दोष नहीं था.
But then, in the New Testament, we see that you know God sacrificed His only Son, Jesus Christ, for us.
और हम देखते हैं कि नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया.
What was seen in the Old Testament, that was not enough, you know, to cleanse us completely from our sin.
और जो पुराने नियम में जो देखा गया था वो बस नहीं, वो काफी नहीं था नया नियम के सामने.
So God had to sacrifice His only Son, an unblemished sacrifice, without any spot, without any sin for us.
और परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया, उसके अंदर कोई कलंक नहीं था, कोई दाग नहीं था.
And Jesus died on the cross according to God's, you know, His God's will. He died on the cross for me.
और पिता का इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान उस क्रूस के ऊपर दे दिया.
And when He died on the cross, He made me acceptable. He made me, you know, that I can stand right in the eyes of God.
और हम देखते हैं कि उसके मृत्यु के द्वारा वो ये काम किया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख में एक धार्मिकता के रूप में खड़ा हो सकूं.
And then the question comes to me, do I still take sin as lightly? Do I still take, you know, Christ's blood so lightly?
और एक प्रश्न ऐसा आता है कि क्या मैं पाप को इतना गंभीर रूप से लेता हूँ?
Yeah, I mean there are instances where we sin. I mean we are not perfect as yet. We do sin.
और ऐसा कुछ घटनाएं या कुछ समय ऐसा होता है कि हम पाप करते हैं, हम एकदम सिद्ध नहीं हैं, कभी-कभी पाप हम करते हैं.
But then a thing came to me saying that knowing the sin and you still sin, I don't think you take, you know, Christ's blood as what it means.
और जब आप जानते हो कि पाप नहीं करना है और फिर भी आप पाप करते हो, इसके मतलब आप उतना गंभीर रूप से उस लहू को आप नहीं लेते हो.
So what he did on the cross for me was, you know, was out of total love, and you know he wanted to, you know, put me right standing in Father's eyes.
और जो उसने क्रूस के ऊपर किया है वो पूरा प्रेम के द्वारा था कि मैं पिता के सामने एकदम एक धार्मिकता से मैं खड़ा हो सकूं.
So today I don't have to carry my own sin, my own burden and walk, but you know I can go boldly to the throne of grace.
और आज मैं मेरे पापों को लेके नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अभी एकदम स्वतंत्रता के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हो सकता हूँ.
प्रेज गॉड.
परमेश्वर के नाम का धन्यवाद.
आई थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल वर्सेस टुडे वी हैव बीन डिस्कस रिगार्डिंग द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस.
और जो वचन हमने सुना था कि परमेश्वर के लहू के सामर्थ्य के बारे में, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ.
एक्चुअली वी गॉट अ सल्वेशन through the blood of Jesus.
और हमें उद्धार मिला है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा.
And it is not only that once only we are getting saved and then afterwards we are completely saved for our lifetime.
और इसका मतलब ये नहीं एक बार हमारा उद्धार हो गया, इसका मतलब पूरा काल तक हमारा उद्धार हो चुका है.
It is kind of a father's love that to give his child that hey child, if you are going walking through this lifetime on the path of Jesus, which is righteousness, you have chances. When you fall down, you can able to get up and get sanctified with my blood.
और एक प्रभु पिता का एक प्रेम है कि जब भी हम हमारे जीवन में हम चलते हैं और गिरते हैं, वो प्रेम और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिलता है ताकि हम खड़ा हो सके और उसके सम्मुख में हम आए.
It's not a man-made planning that okay, once you go with this path and then afterwards something has happened, then you will be broke down and you will be finished out there.
और ये एक मनुष्य का आयोजन नहीं है कि आप थोड़े दूर जाओ और गिर जाओ और फिर खड़े हो जाओ.
Think when God
सोचो इसके बारे में.
Think when God plans, it plans for complete package.
और जब परमेश्वर योजना करता है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से उसका योजना होता है.
It is just kind of a, that's why the Bible says that the complete and perfect gift we can receive only from God.
और एक सिद्ध, एक पूरा तरीके से जो तोहफा है वो परमेश्वर से ही मिलता है.
The sacrifice which Jesus has given you once for all, but it is a perfect one throughout for your lifetime.
और एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन वो एक बलिदान पूरी तरीके से सिद्ध तरीके से गया है एक ही बार.
That's why Paul can say that I had a fight, a good fight through the faith till the end.
और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छा लड़ाई लड़ा है और वो लड़ाई में आखिरी तक मैं लड़ चुका हूँ.
This is the foundation that we have got assurance that hey, my blood already clean through the blood of Jesus. He sanctified me.
और ये एक आश्वासन है कि मुझे वो उसने उस लहू के द्वारा मुझे साफ किया, मुझे पवित्र ठहराया है.
I want to close with this Hebrews chapter 12 verse 14.
और हिब्रोनियों का 12:14
that how we can able to see the God.
और किस तरीके से
हम we can see to God.
हम परमेश्वर के ओर देख सकते हैं.
And we can live in this life in the presence of the
और परमेश्वर को देख के हम इस पृथ्वी के ऊपर हम जी सकते हैं.
That pursue with all men.
और
pursue with all men.
और सब मनुष्य के साथ हम अच्छे तरीके से शांति से हम रह सकते हैं.
That peace with all men, which we don't have any grudge, any grumbling, anything regarding any person around this world, whether it's man, woman, or anything.
और किसी के साथ कुछ बैर नहीं रखते हुए एकदम शांति के साथ रहना.
And the sanctification without which no one will see the Lord.
और उस
sanctification.
और पूरा पवित्रता के साथ हम रह सकते हैं.
God is holy and he asks us to be holy. It's commandment.
और परमेश्वर जो है पवित्र है, हमें भी पवित्र ठहराया है.
And we can't make ourselves holy with our own efforts.
और ये जो पवित्रता जो है हमारी कोशिश से नहीं हो सकता है.
Only through the blood of Christ we can able to become holy.
और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम उस पवित्रता में अपने आप को बना के रख सकते हैं.
So this is the sanctification.
और यही ही जो है वो हम उस जगह पे आना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं.
Are we making ourselves that much humble that yes, this is the supreme need of my life that I need to be clean with the blood of Jesus?
क्या हम ये निर्णय लेते हैं या अपने आप को उतना नीचे गिराते हैं कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और मुझे ये चाहिए और यही मेरा मेरा जरूरत है.
Let's bow down our head and pray to God.
और हम अपने सरों को झुका करके हम प्रार्थना करेंगे.
Father God,
प्रभु पिता,
we thank you Lord.
हम आपको धन्यवाद देते हैं.
We thank you that you have been taking care of us as a child.
और एक बच्चे के समान आप हमें संभालते हैं परमेश्वर.
Thank you Lord that you know that this child is going to be fall.
और आप जानते हैं कि हम गिरते हैं.
Lord, we thank you that you have been make us clean through the Christ blood.
और आप प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप हमें साफ करते हैं प्रभु जी.
Thank you for the loving kindness that you have been shown to us.
आपका प्रेम और दया के लिए जो आपने हमारे ऊपर दिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी.
We thank you Lord that you have planned all the things for us for the goodness of us.
और आपने जो भी चीजें प्रभु हमारे लिए योजना बनाई है भलाई के लिए उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी.
You know our heart Lord.
हमारे हृदय को आप जानते हैं प्रभु.
It's already corrupted Lord.
और हाँ, वो बहुत ही दुष्ट हो चुका है प्रभु जी.
That's why we cry unto you Lord.
हम आपके ओर पुकारते हैं, रोते हैं प्रभु जी.
Lord we ask Lord. Please forgive us, Lord.
ओ प्रभु जी, हमें क्षमा करना प्रभु जी.
Let that cry come to our heart, Lord. At every time in our life, Lord.
और ये जो थड़प है, जो रोना है प्रभु, जब भी हमारे अंदर जीवित है प्रभु, हम उस तरीके से हम रोए प्रभु जी.
Lord, through thy blood you have been purchased us.
और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें खरीदा है प्रभु जी.
Yes, Lord, we proclaim that we are your slaves, Lord.
हम आपके गुलाम हैं प्रभु जी.
Without you, we can't do anything, Lord.
आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी.
Yes, Lord, we confess that we are nothing, Lord.
हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी.
And nothing good dwells in us, Lord.
और हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है प्रभु.
We are repenting for our every हम प्रभु sort उसके sins,
हाँ, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे सब पापों के ऊपर.
You are holy and make us holy, Lord.
आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र करिएगा प्रभु.
We want to worship you.
हम आपके आराधना करना चाहते हैं.
And become your holy sons and daughters, Lord.
आपके पवित्र बच्चे बनना चाहते हैं प्रभु जी.
Lord, give us a chance.
हमें एक मौका दीजिएगा.
Lord, clean us.
हमें साफ करिएगा प्रभु.
Through thy precious blood.
प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें 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 साफ करिएगा.
And bless each and every brother.
हर एक को आशीष करिएगा प्रभु जी.
And let them understand how much precious this blood.
और समझे कि कितना बहुमूल्य है ये लहू.
How much priceless price has been paid for us.
हाँ, और कितना उसके लिए दाम चुकाया गया था प्रभु जी.
Lord, we never forget.
उसे हम कभी नहीं भूलना है प्रभु.
Let you give that spirit which abstain every kind of iniquity.
और जो और ऐसा आत्मा दीजिए कि सब तरीके से पाप से हम घृणा करें प्रभु जी.
Do not want to commit sin, not once, Lord.
और एक बार भी हम पाप नहीं करना चाहते हैं प्रभु जी.
Let's be committed our heart.
हाँ प्रभु जी, हमारे हृदय से प्रभु उसको अंगीकार करते हैं प्रभु.
We ask this prayer in Jesus' mighty name.
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन.